Yeah. वार्ता के संबंध में एक पृष्ठभूमि एक इंट्रोडक्शन परिचय मात्र दिया जाए। तत्व रूप से कि द्वारका क्या है, वृंदावन द्वारका मंत्रों में संबंध क्या है, इस तरह की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण द्वारका में करते हैं। रणछोड़ राय जी के बारे में तो हम सुन ही चुके हैं, रणछोड़ राय जी का दर्शन भी कर लिया हम सब ने ठाकुर में। आगे चल के श्रीनाथ जी का दर्शन नाथद्वारा में भी कर लिया और अब हम चल रहे हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री रविशंकरदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन श्री कृष्ण का मूल स्थान है और श्री कृष्ण का धाम वृंदावन अपने आप को विस्तार करता है और अनेक निवास स्थान भगवान के बन जाते हैं। श्री कृष्ण भी अपने आप को विस्तार करते हैं इन विभिन्न स्थानों में निवास करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य तीन तरीकों से होता है ऐसे कविराज गोस्वामी बताते हैं। एक है पूर्ण, दूसरा है पूर्णतर और तीसरा है पूर्णतम। ये तरतम ये न्याय आपने सुना होगा। जब हम कहते हैं कोई चीज अच्छी है और अच्छी है सबसे अच्छी है, तुलनात्मक दृष्टि से हम कोई बात को कहना चाहते हैं, किसी चीज का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ये तरतम्य न्याय का प्रयोग करते हैं। ये चीज बहुत स्वादिष्ट है, ये और स्वादिष्ट है, ये सबसे स्वादिष्ट है। तो इसी तरह से भगवान के स्तर में भी या भगवान के संबंध में ये तरतम्य न्याय का प्रयोग किया गया। भगवान और भगवान की भक्ति परिपूर्णता के स्तर पर स्थित है। भगवान तो परिपूर्ण हैं, फिर भी उस परिपूर्णता के स्तर में और भी विभाग हैं, क्योंकि भगवान की परिपूर्णता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान असीमित हैं। तो भगवान से कोई भी संबंधित चीज सीमित नहीं होती। जैसे भगवान असीमित हैं तो उनके संबंध में जितने भी चीजें हैं वो सब भी असीमित होती हैं। जब भगवान अपने असीमित गुणों का प्राकट्य नहीं करते हैं, केवल अंश मात्र उनके गुणों का प्राकट्य करते हैं, तो भगवान के उन रूपों को पूर्ण कहा जाता है। ये पूर्ण रूप है भगवान का, क्योंकि भगवान तो अपूर्ण नहीं हो सकते। भगवान अपने गुणों का प्रदर्शन पूर्णतया न भी करें फिर भी वो तो भगवान ही है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गुणों का प्राकट्य नहीं करते हैं तो उन्हें पूर्ण कहते हैं। जब भगवान अपने समस्त गुणों का प्राकट्य करते हैं परंतु पूर्णतया नहीं, पूर्ण मात्रा में नहीं, तब उन्हें पूर्णतर कहते हैं। और जब भगवान अपने समस्त गुणों का समस्त संपूर्ण मात्रा में संपूर्णतया प्राकट्य करते हैं तो उस समय भगवान को पूर्णतम कहते हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है चैतन्य चरितामृत कि वैकुंठ जगत में जहां भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज ऐश्वर्यशाली नारायण स्वरूप में विराजमान रहते हैं, वहां भगवान के जो भी रूप होते हैं नारायण रूप, वो पूर्ण रूप होते हैं। द्वारका और मथुरा में भगवान के रूप पूर्ण तर है। केवल वृंदावन में ही भगवान का रूप पूर्ण तम है, अर्थात वृंदावन ही एकमात्र स्थान है जहां ये भगवान अपने समस्त गुणों को संपूर्ण मात्रा में प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में है उनका स्थान विशेष है। जो कृष्ण वृंदावन में रहते हैं और जो द्वारका में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं और जो वैकुंठ में रहते हैं, और जब वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, उनमें तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। तो वही भगवान केवल अपने प्राकृत्य में, अपने गुणों के प्राकृत्य में वो अपने आप को रोक लेते हैं, इसलिए रूप भेद हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। तो वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण पूर्ण तम है, मथुरा और द्वारका के श्री कृष्ण पूर्ण तर है, और वैकुंठ के भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है। ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं, गोलोक नाम ही निज धाम तरेच तस्य देवी महेश हरि धाम सुषेश तेषु ते भाव विचया विहिताश्चर्येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री गोविंद को के चरणों में नमन करता हूँ जो कि अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। गोलोक वृंदावन समस्त भगवान के धामों में से, समस्त सृष्टि में से सर्वोपरि है। और जब तले फिर गोलोक वृंदावन के नीचे निम्न श्रेणी में है, एक के बाद एक हरिधाम जो वैकुंठ जगत है, फिर महेश धाम जो शिव जी का लोक है, और फिर देवी धाम जो ये भौतिक सृष्टि है। जिस भौतिक सृष्टि में हम निवास करते हैं, यहाँ देवी का राज चलता है। देवी अपने त्रिशूल लेकर सारे बद जीवों पर प्रहार करती रहती हैं। ऐसे नहीं कि वो बहुत क्रूर हैं, परंतु उनका कर्तव्य ही ऐसा है, उनकी सेवा है। भगवान ने उनको इस सेवा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए उनका नाम दुर्ग है, दुर्गा, क्योंकि इसकी भौतिक सृष्टि दुर्ग या किले के समान है जिसमें हम सब पधे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। एक के बाद एक भौतिक शरीर हमें धारण करने पड़ रहे हैं, और दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से हमें वश में रख रही है, पीड़ित अवस्था में रख रही है। तो दुर्गा देवी हमारी माता है इस भौतिक सृष्टि में, और दुर्गा देवी के पिता शिव जी वो हमारे पति, वो हमारे पिता हैं। तो दोनों दुर्गा देवी और शिव जी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 84 लाख योनियों के वो माता पिता हैं, इसलिए देवी धाम ये दुर्गा देवी का कार्यालय है। परंतु उनका निवास स्थान कहाँ है? जहाँ उनके पति रहते हैं वहां पे तो पत्नी पति के साथ रहती है। तो दुर्गा देवी शिव जी के साथ रहती हैं महेश लोक में, शिव लोक में। तो देवी धाम के भौतिक सृष्टि के ऊपर है शिव लोक। शिव लोक एक बीच का स्थान है आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में, और शिव लोक के ऊपर है भगवान का वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत, जहां निराकार ब्रह्म ज्योति है वो सब जगह फैली हुई है। उस निराकार ज्योति में अनगिनत आध्यात्मिक लोक, जिनको वैकुंठ लोक कहते हैं, वो तैर रहे होते हैं। प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप नारायण स्वरूप में विराजमान रहते हैं और हर एक लोक में भगवान के साथ अनगिनत उनके शुद्ध भक्त निवास करते हैं, उनके सानिध्य में उनकी सेवा करते रहते हैं। और वैकुंठ लोकों में जो कि अनगिनत है संख्या में, उनमें से सर्वोपरि है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, कृष्ण लोक, या इसे गोलोक भी कहते हैं। और कृष्ण लोक के तीन भाग हैं, एक भाग है गोकुल या वृंदावन या व्रज भूमि, दूसरा भाग है मथुरा और तीसरा भाग है द्वारका। तो आध्यात्मिक जगत में ये वृंदावन मथुरा और द्वारका है, कृष्ण लोक के अंतर्गत ये तीनों भाग आते हैं। तो कृष्ण लोक में भगवान कृष्ण के रूप में रहते हैं, चाहे वो गोलोक वृंदावन वृंदावन में हो, मथुरा में हो या द्वारका में हो, परंतु कृष्ण लोक के बाहर फिर भगवान वैकुंठ लोकों में चतुर्भुज नारायण स्वरूप में रहते हैं। वही श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में प्रकट कराते कर देते हैं अपने आप को। तो कृष्ण और नारायण में अंतर नहीं है तत्व में। तो जब श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, जैसे हमने पहले कहा, वो पूर्ण तम भगवान है। और जब वैकुंठ में रहते हैं तो उस समय वो पूर्ण है। तो बीच में मथुरा और द्वारका में क्या वो पूर्णता है? दूसरे शब्दों में मथुरा और द्वारका एक ऐसा स्थान है जो कि गोलोक वृंदावन और वैकुंठ जगत के बीच में है। भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों को वृंदावन में प्रकट कराते हैं, परंतु सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है उनका? वो है उनका माधुर्य। वृंदावन में जितने निकटता से, जितने मधुरता से वहां के भक्त ब्रजवासी भक्त श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, ऐसी निकटता ऐसी मधुरता और कहीं भी नहीं देखी जाती। वैकुंठ जगत में जब भगवान के भक्त चतुर्भुज नारायण की सेवा करते हैं तो वहां उनके मन में एक भावना रहती है कि ये भगवान है, कितने महान है, सर्वशक्तिमान है। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य, जब ऐश्वर्य ज्ञान का प्राधान्य होता है तो उस समय जो प्रीति है वो संकुचित हो जाती है, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति। तो जब भगवान के ऐश्वर्य की जानकारी होती है तो इसे ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं, जो वैकुंठ जगत में पाई जाती है। इसलिए जो शुद्ध प्रेम है वो शुद्ध तो अवश्य रहता है, फिर भी जो एक मिठास है वो थोड़ी संकुचित हो जाती है, उतनी खिली हुई नहीं रहती है, क्योंकि वो एक भावना रहती है कि ये तो मेरे प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, भगवान है। परंतु वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं तो उस समय इन ऐश्वर्यों को भगवान के भक्त वृंदावन में मानते नहीं है। अर्थात इस केवल भाव के भक्ति में उनके मधुरता में, प्रेम के मधुरता में कोई अंतर नहीं पड़ता। जब श्री कृष्ण कंस का वध कर चुके थे मथुरा में आके, कोल या पीर आदि का वध भी कर दिया था, बहुत बलवान योद्धाओं का, मल योद्धाओं का भी वध कर दिया था, देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण बलराम को देखा और उस समय उनके मन में कामना आई कि अरे अब तक तो हम इनको अपना पुत्र मान रहे थे, परंतु ये तो भगवान है। और इसलिए उस समय उनकी जो वात्सल्य भावना थी वो शिथिल हो गई, वो कमजोर हो गई। और जब कमजोर हो गई तो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो श्री कृष्ण पुनः देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने योग माया का पर्दा डाल दिया, जिसके द्वारा देवकी और वसुदेव सोचने लग गए कि अरे ये तो हमारा लाडला पुत्र है। फिर श्री कृष्ण को आलिंगन किया, सर चूमने लगे, परंतु उनका जो वात्सल्य भाव था ऐश्वर्य के प्रदर्शन के कारण शिथिल हो गया, कमजोर हो गया। उसी तरह से जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा तो अर्जुन का जो मैत्री भाव है, सख्य भाव है, वो काफी निकट का था, वो भी कमजोर हो गया, शिथिल हो गया। और अर्जुन क्षमा याचना करने लगे श्री कृष्ण से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपराध कर दिया। तो अर्जुन का सख्य भाव अब शिथिल हो गया, परंतु वृंदावन में ऐसे नहीं होता। मथुरा द्वारका में भगवान के ऐश्वर्य के प्रदर्शन के कारण जो मधुरता है वो थोड़ी कम होने लगती है, एक ऐश्वर्य भाव हो जाता है, एक अंतर बन जाता है भक्त और भगवान में। हालांकि वो शुद्ध भक्त है, परंतु वृंदावन में भगवान के ऐश्वर्य के कारण उनकी प्रेम के मधुरता में, निकटता में अंतर नहीं पड़ता। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के सुंदर हारविंद में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन किया, पहले तो थोड़ी चकाचौंध हो गई माता यशोदा की, ये क्या है, भ्रमित हो गई, परंतु उनका जो भाव था यही था कि ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरा पुत्र है। उनके वात्सल्य भाव में कोई घटन नहीं हुई, प्रेम की मधुरता में घटन नहीं हुई। इसलिए श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है उनकी मधुरता, और ये मधुर प्रेम का जो प्राकट्य है वो वृंदावन में असीमित मात्रा में पाया जाता है। वैकुंठ जगत में अवश्य भगवान का माधुर्य है, क्योंकि जहां शुद्ध प्रेम है वहां तो माधुर्य है। इसलिए भगवान नारायण के प्रति जो उनके भक्तों का प्रेम होता है वो भी मधुर है, परंतु ऐश्वर्य की तुलना में बहुत कम है। मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य भी अधिक है, माधुर्य भी अधिक है, परंतु वृंदावन में सबसे अधिक माधुर्य, सबसे अधिक ऐश्वर्य। तो ये एक श्रृंखला है, इससे हम जान सकते हैं कि वही एक श्री कृष्ण अपने आप को तीनों स्थानों पर प्रकट करा लेते हैं। कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल अपने तत्व में अंतर है। रस तत्व एक ही है, रस बस अलग अलग है। एक बार गुरु गोस्वामी पाद जब मन में सोच रहे थे कि मैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कुछ एक नाटक लिखूंगा, तो उन्होंने सोचा कि वृंदावन मथुरा द्वारका आदि संपूर्ण समस्त लीलाओं को एक ही ग्रंथ में मैं लिखूंगा। तो जब वो चलते चलते उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे तो सत्यभामापुर नाम के एक गांव में रुके रात के लिए। उस रात को एक बहुत ही तेजस्वी अति सुंदर महिला जो एक रानी की तरह देख रही थी, चमक रही थी कोटि कोटि सूर्यों के समान, एक देवी थी वो, उनके स्वप्न में प्रकट हो गई और कहने लगी कि मेरे बारे में अलग ग्रंथ लिखना, अर्थात सारी लीलाओं को जोड़ना नहीं, द्वारका की लीलाएं अर्थात और वृंदावन की लीलाएं इनको अलग अलग लिखना। आगे चैतन्य महाप्रभु के पास श्री रूप गोस्वामी गए तो कई दिन बीत गए। महाप्रभु प्रतिदिन रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर का दर्शन करने या उनको कृपा देने के लिए आ जाते तो एक बार अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा, कृष्ण को वृंदावन के बाहर नहीं ले आना। जो यदु कुमार कृष्ण है वो वासुदेव कृष्ण है, परंतु वृंदावन में रहने वाले कृष्ण नंद महाराज के सुपुत्र हैं। वृंदावनम पत्यच्य पदमेकम न गच्छति, कि नंद महाराज के पुत्र वृंदावन के बाहर एक कदम भी बाहर नहीं लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये नहीं है कि जो कृष्ण द्वारका में मथुरा में रहते हैं वो कृष्ण ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी तो कृष्ण ही है, परंतु पूर्णतर कृष्ण है। कृष्ण अपने आप को जब प्रकट कराते हैं, विस्तार कराते हैं मथुरा द्वारका में, तो अपने संपूर्ण गुणों को, अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रकट नहीं करते हैं, तो एक कम मात्रा में प्रकट करते हैं। इसलिए उनको वासुदेव कृष्ण कहते हैं, भगवान के विस्तार है वो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब कह के चले गए तो रूप गोस्वामी सोचने लगे कि अरे अब चैतन्य महाप्रभु उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो कि सत्यभामा देवी ने मुझे स्वप्न में किया था। तो मुझे अब दो नाटक लिखने चाहिए, एक नाटक में काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने दो नाटक लिखे, एक है विदग्ध माधव और दूसरा है ललित माधव। विदग्ध माधव इस ग्रंथ में उन्होंने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया और ललित माधव इस ग्रंथ में उन्होंने द्वारका और मथुरा के लीलाओं का वर्णन किया। तो इस तरह हमें वृंदावन के कृष्ण एक और मथुरा द्वारका के कृष्ण दूसरी ओर, इनमें भिन्नता और अभिन्नता दोनों साथ साथ समझने चाहिए। तो वृंदावन के कृष्ण द्वारका के कृष्ण से एक भी हैं और अलग भी है। इसे अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहते हैं, एक साथ ही भेद और अभेद। तो द्वारका लीला भगवान की बहुत सुंदर तो है क्योंकि श्री कृष्ण की ही लीलाएं हैं। श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में कंस के कारागार में, बस वहां चंद मिनटों के लिए रहे, थोड़े समय के लिए रहे, वसुदेव देवकी के ऊपर कृपा बरसाई, उनको अच्छे उपदेश दिए, उनके पूर्व जन्मों की याद दिलाई और कहा डरो नहीं, मैं आश्वासन दिलाता हूँ। कृष्ण तो परम सत्य हैं, अपनी रक्षा करने में तो पूरी तरह से सक्षम हैं। तो फिर वसुदेव को आदेश दिया कि मुझे गोकुल ले जाओ। तो उस समय से लगभग 10.5 वर्ष श्री कृष्ण वृंदावन में रहे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में श्री कृष्ण के वृंदावन मथुरा और द्वारका लीलाओं का वर्णन है। हालांकि पहले स्कंध में भी थोड़े बहुत हस्तिनापुर द्वारका लीलाओं का वर्णन भी आता है, परंतु प्रमुख तया भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वृंदावन मथुरा और द्वारका के दशम स्कंध में आती है। तो वृंदावन लीला प्रारंभ होती है बहुत जल्दी दशम स्कंध में, जब श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं गोकुल उनके जन्म के बाद, तो वृंदावन शुरू, वृंदावन लीला का वर्णन शुरू हो जाता है श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में। और ऐसे 38वें अध्याय तक वृंदावन लीला चलती है। तो लगभग 35-36 अध्याय वृंदावन लीला के, जबकि वृंदावन में श्री कृष्ण केवल 10.5 वर्ष रहे, परंतु 35-36 अध्याय श्री कृष्ण सुखदेव गोस्वामी ने लगाए हैं। और मथुरा में फिर गए भगवान श्री कृष्ण, 18 साल वहां रहे, 28 साल की आयु तक, और बस केवल 10-12 अध्याय मथुरा लीला में समाप्त कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। पर अध्याय 50 से लेकर दशम स्कंध के अंत तक, दशम स्कंध में 90 अध्याय है, इसका मतलब है कि लगभग 40 अध्याय शुक्रदेव गोस्वामी लेते हैं द्वारका लीला का वर्णन करने। तो भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका लीला में, उन्होंने द्वारका लीला की लगभग 100 वर्षों तक, 100 वर्षों की लीला शुक्रदेव गोस्वामी ने 40 अध्यायों में वर्णन कर लिया, और 10.5 वर्षों की लीला 36 अध्यायों में, 35 अध्यायों में कर लिया। इससे हम समझ सकते हैं कि वृंदावन लीला कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु द्वारका लीला भी कितनी महत्वपूर्ण है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष रहे वहां, 100 साल द्वारका लीला उन्होंने की, और मथुरा लीला जोड़ दें तो बस 100 से भी अधिक हो जाते हैं। तो द्वारका लीला के 40 अध्याय हैं, 100 वर्ष भगवान ने बिताए, और श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने ये लीलाएं की। इसलिए इन लीलाओं के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और द्वारका लीला और अच्छी तरह से गहराई में समझने के लिए आज हम द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान की संपूर्ण लीलाएं वो नित्य मानी जाती है। नित्य का मतलब है कि भौतिक जगत में भी वो नित्य हैं। ये कैसे? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत समझाते हैं कि जिस तरह सूर्योदय किसी एक स्थान पर एक समय होता है पृथ्वी के ऊपर, और थोड़े समय बाद पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर सूर्योदय दिखाई देता है, और थोड़े समय बाद किसी तीसरे स्थान पर सूर्योदय हो रहा होता है, ऐसे हर समय पृथ्वी में कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा होता है। सही है ना? हालांकि एक स्थान में सूर्योदय एक क्षण होता है फिर समाप्त हो जाता है, अगले दिन फिर से होता है, परंतु पृथ्वी में सूर्योदय कहीं न कहीं हो ही रहा है। तो पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्योदय हर समय हो रहा है कहीं ना कहीं किसी अलग अलग स्थान में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्योदय पृथ्वी में नित्य है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ धरातल में आके, पृथ्वी में आके लीलाएं करते हैं, मधुर मधुर लीलाएं। शुरुआत होती है जब वो गोकुल में जाते हैं, जन्म होता है, गोकुल में जाके पूतना वध करते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि पूतना वध से लेकर वृंदावन में भगवान बहुत लीलाएं करते हैं, फिर मथुरा में करते हैं, फिर द्वारका में आते हैं, और द्वारका लीला कब अंत होती है? जब मौसल लीला होती है, जिसका वर्णन हम करेंगे आगे चल के प्रभास क्षेत्र में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ, यदुवंशियों का तिरुभाव हुआ, आपस में युद्ध हुआ यदुवंशियों का, और उस युद्ध के बाद भगवान और भगवान का सारा कुल जो है वो वापस चले गया अपने अपने धाम में। तो उतना बल से लेकर मौसल लीला तक भगवान ने इस ब्रह्मांड के इस एक लोक में ये लीला प्रकट की, एक के बाद एक के बाद एक। परंतु जैसे यहाँ भगवान ने पूतना का वध किया, किसी दूसरे लोक में उन्होंने पूतना का वध किया, और यहाँ इस लोक में पूतना के वध के बाद तृणावर्त का वध किया। जब यहाँ तृणावर्त का वध किया तो दूसरे लोक में वहां तृणावर्त का वध किया। तो ऐसे एक के बाद एक भगवान की लीलाओं का एक चक्र चल रहा। तो भगवान की प्रत्येक लीला कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में चल रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, भौतिक सृष्टि में। कितनी विशाल बात है, सर चकरा जाता है ऐसे कल्पना भी करते हैं। अचिंत्य है भगवान की शक्तियां, इसलिए भगवान की द्वारका लीला भी नित्य है। आध्यात्मिक जगत में जहां द्वारका है, पर व्योम द्वारका, वहां तो चल ही रही है नित्य रूप से। हाँ, मौसल लीला तो वहां नहीं होती, वहां तो किसी का देहांत नहीं होता, फिर भी द्वारका लीला जो भगवान की चल रही है, वहां भगवान द्वारकाधीश हैं, यदु कुमार हैं, तो भौतिक जगत में सारी लीलाएं चलती रहती हैं। जिस तरह से जब श्री कृष्ण वृंदावन प्रकट हो जाते हैं, वो वृंदावन धाम को प्रकट करा लेते हैं, और ये भौम वृंदावन में और उस पर व्योम वृंदावन में कोई अंतर नहीं रहता, ठीक उसी तरह है यहां जो भगवान ने द्वारका धाम प्रकट किया है। मैं वर्तमान क्रिया का प्रयोग कर रहा हूं, किया था नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो द्वारका है वो वही द्वारका है जो कि श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय था। तो जैसे वृंदावन जो यहां पृथ्वी पर प्रकट होता है वो आध्यात्मिक जगत के वृंदावन से बिल्कुल अभिन्न है, ठीक उसी तरह है ये द्वारका भूमि, ये द्वारका धाम जो यहां प्रकट हुआ है वो आध्यात्मिक जगत के द्वारका धाम से बिल्कुल अभिन्न है। तो हमें याद रखना है कि हम अब भगवान के धाम में प्रवेश करने वाले हैं। हमें ये नहीं सोचना है अब हम गुजरात में आ गए, सौराष्ट्र में आ गए, जैसे वृंदावन में जाते समय ये नहीं सोचना हम उत्तर प्रदेश में आ गए या भारत में आ गए। ये सब ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से, साधारण दृष्टिकोण से ये सब ठीक है, परंतु वास्तव में वृंदावन, मथुरा, द्वारका ये इस भौतिक सृष्टि के अंश नहीं है, ये तो साक्षात प्रत्यक्ष भगवान के धाम हैं, ये भगवान प्रकट कराते हैं जब वो स्वयं प्रकट होते हैं तब। जैसे श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं वासुदेव कृष्ण के रूप में, और वासुदेव कृष्ण फिर मथुरा द्वारका में लीला करते हैं, ठीक उसी तरह से वृंदावन में श्रीमती राधा रानी अपने आप को विस्तार करती हैं द्वारका की महिषियों के रूप में या रानियों के रूप में। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जैसे भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब के उद्गम, उन सब के स्रोत वृंदावन के श्री कृष्ण हैं। ये थे चांद सकल हर उन सब कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। ठीक उसी तरह से भगवान के अवतारों में जितने भी संगिनी हैं, जितने भी उनके साथ में उनकी शक्तियां हैं, उनके उद्गम या उनके स्रोत ही श्रीमती राधा रानी है। वैकुंठ में श्रीमती राधा रानी अपने आप को विस्तार करती है लक्ष्मियों के रूप में, वृंदावन में श्रीमती राधा रानी अपने आप को प्रकट कराती है विस्तार करके गोपियों के रूप में, और द्वारका में वही श्रीमती राधा रानी अपने आप को विस्तार करके प्रकट कराती है श्री कृष्ण की पटरानियों के या महिषियों के रूप में। तो यहां पर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण समस्त रसों का आस्वादन करते हैं जैसे उन्होंने वृंदावन में किया। वृंदावन में दास्य रस का आनंद लिया चित्रक पत्रक इत्यादि उनके भक्तों ने, तो द्वारका में दारुक जो उनके सेवक थे, सारथी थे, उन्होंने दास्य भाव में उनकी सेवा की। श्री रामा सुबल व मंगल आदि वृंदावन में सख्य रस का प्रेम का आस्वादन श्री कृष्ण के साथ करते, तो यहाँ द्वारका में अर्जुन और भीम ने सख्य रस का आस्वादन किया कृष्ण के साथ। वहां वृंदावन में वात्सल्य रस का आनंद नंद महाराज और माता यशोदा ने किया, तो यहाँ वात्सल्य रस का आनंद मथुरा और द्वारका में वसुदेव और देवकी ने किया। माधुर्य रस का स्वाद श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में गोपियों ने किया, तो वही माधुर्य रस का स्वाद द्वारका में श्री कृष्ण के रानियों ने किया। तो माधुर्य रस वृंदावन में है और द्वारका में भी है, फिर भी इन दोनों प्रकार के माधुर्य रसों में एक सूक्ष्म अंतर है। वृंदावन में जो माधुर्य रस है उसे परकीय रस कहते हैं, और जो द्वारका का मधुर रस है उसको स्वकीय कहते हैं, क्योंकि वृंदावन में गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण का संबंध है वो विवाह के बाहर था, क्या है समझना चाहिए, परंतु इन संबंधों को हमें लौकिक या भौतिक नहीं समझना चाहिए। ये केवल एक लीला है भगवान की, भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो भी संबंध होते हैं वो शुद्ध सात्विक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दिव्य होते हैं। तनिक भी इसमें कोई कलमश नहीं है भौतिक प्रकृति का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संबंध विवाह के बाहर होने के बावजूद हमें जानना चाहिए कि ये लीलाएं बहुत शुद्ध हैं, आध्यात्मिक हैं। केवल उन लीलाओं के माधुर्य को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। और यहाँ द्वारका में भगवान श्री कृष्ण विवाह की सीमाओं के भीतर अपने माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं अपने रानियों के साथ, इसलिए स्वकीय रस कहलाता है। चाहे परिकीय हो या स्वकीय हो, दोनों ही आध्यात्मिक है, दोनों ही दिव्य है। परंतु आगे चल के हम श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के लीलाओं का वर्णन द्वारका में करेंगे। जैसा आपको पता है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेक अनगिनत गोपियों के साथ विलास लीला की, तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया। तो आगे चल के हम वर्णन करेंगे भगवान के द्वारका लीलाओं का, लेकिन आपके लिए थोड़ी सेवा है, आपको आपस में पूछताछ करके किताब पढ़ के द्वारका पहुंचने तक आपको ये याद करना है कि भगवान श्री कृष्ण की पहले 8 रानियों के नाम क्या थे। ठीक है, 16,100 हैं, उनका नाम याद रखना मुश्किल है, परंतु 8 जो रानियां हैं भगवान की, उनकी तो उनके नाम की याद सबको रखने हैं। ठीक है, कबूल है। तो द्वारका जाते जाते आप आपस में चर्चा कर लीजिए और क्रम से आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों से विवाह हुआ तो इस क्रम से हुआ, पहले नंबर में कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, चौथे, इस तरह से। तो वैसे द्वारका के बारे में और बहुत कुछ कहना है, परंतु यहाँ इस समय तो हम द्वारका में बैठे नहीं हैं, हम नील माधव जी के सामने बैठे हैं। नील माधव जी तो वृंदावन में निवास करते हैं, तो हम वृंदावन में हैं, द्वारका की ओर जा रहे हैं। नील माधव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी द्वारका की यात्रा आप सफल बनाइए, हमारे हृदय में आपके प्रति, द्वारका देश के प्रति भी शुद्ध प्रेम जागृत कराइए। तो अब हमें प्रसाद लेकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना है, इसलिए आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। साथ साथ हम राजकोट के भक्तों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आप सबने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ हम सबके लिए की है, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ आपके सुंदर मंदिर में आके। और ये जान के भी और देख के भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बहुत बड़ा मंदिर अभी आपका यहाँ बनने जा रहा है। आशा करते हैं कि शीघ्र ही ये निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा और बहुत बड़े संख्या में भक्त यहाँ पर आएंगे। विशेष रूप से वैष्णव सेवा प्रभु ने संपर्क किया है भक्तों के साथ में, तो वैष्णव सेवा प्रभु और आप सब भक्तों को, राष्ट्र के भक्तों को आप पुनः धन्यवाद देते हैं और हमारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं अर्पण करते हैं। श्रीला महाविष्णु महागोस्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा नील माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की, नितार गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। श्री श्री राधा नील माधव की। यहाँ पे आज महाराष्ट्र से यात्रा करने के पहले 2 किलोमीटर पहले खोडियार माता जी का मंदिर आता है, उसके सामने ही महाराज ने एक टेंट डाला था, सादा टेंट था। उनके साथ शायद महाराज पहचानता होंगे दीना अनुकंप दास सिंगापुर से महाराज के शिष्य साथ में रहते थे। बाद में देखते हैं प्रभु उनसे उनको मिले। तो वो टेंट इस तरह से हुआ कि तूफान आया एक जोरदार और टेंट उड़ गया था। और बाद में महाराज सेवा के अधारे से संध्या आश्रम आपकी व्यवस्था हुई है, मैंने सुना द्वारका में। तो संध्या आश्रम महाराज से एक महीना रहे, उसके पहले मीरा गेस्ट हाउस से वहाँ पर भी आपकी व्यवस्था है, उधर महाराज एक महीना रहे थे। अब महाराज सोच रहे थे कि कुछ 10x10 का एक रूम लेके मैं थोड़ा प्रचार कार्य वहाँ पे चालू करूँगा। तो ऐसा संयोग हुआ कि आप जहाँ पे अभी अपना द्वारकाधीश का मंदिर है द्वारकाधीश के स्थल का, वहाँ पे एक भरतिया भवन करके गेस्ट हाउस धर्मशाला थी। और भरतिया अपने स्थल के सन्यासी है, उनके शिष्य है उत्तुष भरतिया करके, उनकी धर्मशाला थी। और वहाँ पे लोकल केयरटेकर थे ब्राह्मण, वो कुछ मिस यूज कर रहे थे इसलिए वो स्थल पर देना चाहते थे और उसे निकालना था बहुत मुश्किल था। और उन्होंने यशोमती गुरु जो अहमदाबाद गुजरात के प्रमुख है उनको कॉन्टेक्ट किया था। और यशोमती गुरु को पता नहीं था कि महाराज द्वारका में कुछ करना चाहते हैं महाराज से। तो महाराज श्री सन्याश्रम रहे, बाद में वहाँ पे एक दूसरा एक दो तीन आश्रम में रहे। फिर जहाँ पे भरतिया भवन था वहाँ पे महाराज भाड़े पे रहने के लिए गए। उन्होंने कहा कि उपाध्याय करके ब्राह्मण था, उनको कहा कि मैं एक महीना रहना चाहता हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ, तो ये मेरे को जगह चाहिए, तो आप जाके देखना अभी तो दूर दिए सर। तो उधर दूसरे माले पे महाराज का टेरेस ओपन रूम था, जैसे आप ओपन करेंगे तो महाराज के द्वारका के दर्शन द्वारका जी शिखर के दर्शन हो रहे थे। तभी उसी दिन महाराज ने इच्छा प्रकट की थी कि जगह कितनी सुंदर है, अगर ये जगह इस पार में मिलेगी तो सुंदर छोटा मंदिर बन जाएगा। लेकिन तब किसको कुछ पता नहीं था, महाराज से पता नहीं था द्वारका जी की क्या इच्छा थी। और आप आश्चर्य करेंगे कि महाराज जी वहाँ पे 2 दिन रहे और महाराज जी ने यशोमति में फोन किया कि भाई मैं द्वारका में जगह ढूंढ रहा हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। यशो ने कहा कि वहाँ पे भरतीय भवन करके है, वो जगह आपको दान में मिल रही, महाराज जी वहाँ पे रुका हुआ करके। और 15 दिन के अंदर वो जगह अपने आप में आ गई, बहुत स्ट्रगल हुआ, लोग ब्राह्मण को विरोध किया। और शुरुआत में महाराज ने धीमे धीमे वहाँ पे पहले भगवान के स्वरूप आ गए, एक रूम में थे और अभी सुंदर इस्कॉन का प्रथम पत्थर का पूरा मंदिर बना हुआ है, छोटा मंदिर है बहुत सुंदर मंदिर है। और अभी उसका जुर्ना गेस्ट हाउस पूरा तोड़ के नया 36 रूम का गेस्ट हाउस का काम चल रहा है, अभी आप जाएंगे देखेंगे। और बाद में 2002 में महाराज यहाँ पे राजकोट में आए। ये 2002 साल के पहले 18 साल पहले 2002 से 18 साल पहले ये जगह यशोमती प्रभु ने तब खरीद करके ली थी। और मेरे पास उसकी यह 1,25,000 में जमीन ली थी, ये जमीन आप खड़े हैं वहाँ पे। और वो टाइम पे काला रोड का कुछ की कीमत नहीं थी, सब लोग आप जहाँ से एंट्री किया कुआड़ रोड वो अहमदाबाद का हाईवे कहा जाता था, उधर ही सब कीमती एरिया था। 2002 में महाराज यहाँ पे बैठे, मैं भी यहाँ पे आना नहीं चाहता था महाराज के स्वयं, क्योंकि द्वारका अच्छा छोटा गाँव था, उधर सब में तो अच्छा लगता था। लेकिन महाराज ने कहा कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे पूरा जंगल था। और महाराज ने धीमे धीमे वो एक सब कानून बन गया, ये छोटा मंदिर बांधा और अभी ये बड़ा मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। और आप सभी के आश्रम चाहते हैं कि 2015 में इसका भी 50 वर्ष पूरा हुए, तभी हम रोपा को एक मंदिर अर्पण करना चाहते हैं। बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, अंदर पूरा मार्बल का क्लैडिंग है और भोजन रेस्टोरेंट सभी संपूर्ण रीति एक मंदिर ब्रह्मचारी के रूप लेके गेस्ट हाउस बना नया बन रहा है। महाराज ने सब संकल्पना दी थी कि हम उस तरफ प्रयत्न कर रहे हैं। हम सभी आप लोग का आशीर्वाद चाहते हैं और महाराज भी आए यहाँ पे, हमको मार्गदर्शन किया इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और आप लोग आते रहिए, ऐसे द्वारका में भी हमारे दूसरे भक्त वहाँ पे आपके सेवा के लिए इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। और कुछ चाहिए तो उधर स्वयं से आप लोग प्रसन्न होता तो आपके द्वारका में है। दूसरी दो तीन सूचना देता हूँ कि कुछ लोग आप लोग थके होंगे तो ये जो गेट है यहाँ से पहले वाले पे आप जाएंगे लेफ्ट साइड में तो सभी रूम खुल के रखे हैं, माता जी को भी आप लोग सब लोग तो फ्रेश हो सकते हैं, जिसको स्नान करना है तो स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 15 स्मृति दीजिए, अभी सब प्रसाद की उसका रेडी है, प्रसाद की उसका कर रहे हैं हम लोग। 15 स्मृति में आप तब तक थोड़ा कीर्तन और बाद में हम लोग उनके साथ दर्द कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। राजकोट के राधा नील माधव मंदिर में कृष्ण सेवा प्रभु और अन्य भक्तों का हार्दिक तौर पर धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है हम सबके लिए यहाँ पर। तो 3 बार जोर से हरिओम कहेंगे। धन्यवाद।